एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। सभी सुनने वालों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपकी होस्ट स्पीकर
और मैं हूं आपका एक्सपर्ट स्पीकर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो लिखी तो गई सदियों पहले पर आज भी ऐसे लगती है जैसे कल ही लिखी गई हो।
हाँ, कौन सी?
मिशेल डी मॉन्टेन के निबंध या द कंप्लीट एसेज।
अरे वाह, मॉन्टेन, बिल्कुल लगभग 500 साल पुरानी बात है ना?
हाँ, सोचिए।
और कमाल ये है कि आज जब हम चारों तरफ से जानकारी, सलाहें, पक्के जवाबों की बौछार झेल रहे हैं, तब मॉन्टेन की आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई शांत समझदार दोस्त कह रहा हो, अरे रुको भाई, पहले खुद को तो जान लो।
सही कहा। उनकी वो आत्मखोज की यात्रा, अनिश्चितता को अपनाने की बात, दूसरों को समझने की कोशिश, ये सब तो आज भी हमारे लिए बड़े सवाल हैं।
बिल्कुल, उनका तरीका भी अलग था, कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं।
हाँ, बस अपने अनुभव, अपनी कमजोरियां, अपनी बदलती सोच, उसको टटोलना।
और उनका वो मशहूर सवाल, मैं क्या जानता हूँ, किसेज।
उफ, आज के इस एक्सपर्ट वाले जमाने में जहाँ हर कोई सब कुछ जानने का दावा करता है, ये सवाल तो जैसे एक ताजी हवा का झोंका है।
तो चलिए फिर उतरते हैं मॉन्टेन की इस दुनिया में, देखते हैं ये 16वीं सदी का विचारक हमें आज जीने की कला के बारे में क्या सिखा सकता है।
जरूर। तो पहले ये जान लें कि ये मिशेल आइकम डी मॉन्टेन थे कौन।
हाँ बताइए।
इनका जन्म हुआ था 1533 में फ्रांस में, एक अमीर कुलीन परिवार में। पुनर्जागरण काल चल रहा था और ये उस दौर के एक अहम विचारक माने जाते हैं।
अच्छा, मतलब रईस थे, जमींदार थे, राजनीति में भी थे शायद।
हाँ, सब कुछ थे, पर उनकी असली पहचान बनी उनके निबंधों से।
और सुनाए उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी हुई थी।
अरे हाँ, बेहतरीन क्लासिकल शिक्षा, लैटिन, ग्रीक और पुराने विचारक जैसे प्लूटार्क, सेनेका, ये सब तो जैसे उनकी उंगलियों पर थे।
सेनेका, वो स्टोएक वाले है ना, जो मानते थे कि तर्क और भावनाओं पर काबू पाना ही सब कुछ है।
बिल्कुल, और उसका असर मॉन्टेन्स पर शुरू में दिखता भी है।
लेकिन वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो खास बात है। उन्होंने बॉर्दो की संसद में जज के तौर पर भी काम किया, कोई 13 साल।
अच्छा,
जज?
हाँ।
तो सोचिए, इंसानी फितरत, समाज के दांव पेंच, कानूनों की असलियत, इन सब का सीधा अनुभव मिला उन्हें। फिर यात्राएं भी की, अपनी जमींदारी भी संभाली,
मतलब जिंदगी को जिया भी, सिर्फ पढ़ाने।
एकदम। और एक चीज जिसने उन्हें बहुत गहराई से बदला, वो थी उनके सबसे जिगरी दोस्त एटीन डेला बोईटी की मौत, बहुत कम उम्र में।
ओह हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में।
इस दुख ने उन्हें दोस्ती क्या होती है, अकेलापन क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, इन सब पर बहुत सोचने को मजबूर किया। उनका वो निबंध है ना मित्रता पर।
हाँ, कमाल का है वो।
उसमें जिस ईमानदारी और गहराई से वो उस रिश्ते को याद करते हैं, वो बस छू जाता है।
और यही बात शायद उन्हें उस वक्त के बाकी दार्शनिकों से अलग करती है, नहीं? उनका वो निजीपन।
बिल्कुल, वो अंदाजे ही कबूलनामे जैसा है। जहां दूसरे लोग बड़े बड़े सिद्धांत गढ़ रहे थे, मॉन्टेन अपनी लाइब्रेरी में बैठे खुद से सवाल कर रहे थे।
खुद को ही बना लिया अपना सब्जेक्ट।
हाँ, अपनी आदतें, अपनी बीमारियां, अपने डर, अपनी बदलती राय, सब कुछ। जैसे पुराने यूनानी संदेहवादी होते थे ना।
हाँ, जो हर चीज पे शक करते थे।
वही, ये भी हर दावे पर सवाल उठाते थे। इनका मकसद दुनिया को किसी थियरी में फिट करना नहीं था, बल्कि दुनिया को और खुद को अपनी आंखों से देखना था जैसा वो है।
तो ये जो निबंध है,
हाँ,
ये असल में है क्या, कोई कहानी है या कोई फिलॉसफी का सिस्टम?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई पारंपरिक किताब नहीं है। इसे आप मॉन्टेन की लगभग 20 साल की सोच, उनके आत्ममंथन, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश, उसका एक संग्रह कह सकते हैं।
20 साल? और कितने निबंध हैं इसमें?
3 किताबों में बटे हुए कुल 107 निबंध।
107? और विषय क्या लिखते थे वो?
अरे विषय तो कुछ भी, दोस्ती, शिक्षा, मौत, दर्द से लेकर घोड़े की सवारी कैसे करें, किताबें कैसे पढ़ें, यहाँ तक कि अंगूठों पर और गंदों पर भी निबंध हैं।
क्या बात है, अंगूठों पर भी?
हाँ, मजेदार है ना। लेकिन इस बहुरूपीयपन के पीछे एक बहुत गहरा विचार है।
क्या?
मॉन्टेन का मानना था कि असली ज्ञान बाहर की दुनिया से या मोटी मोटी किताबों से नहीं आता।
तो कहाँ से आता है?
वो आता है अपने अंदर झांकने से, अपनी छोटी से छोटी आदत, अपनी बड़ी से बड़ी भावना, उसका ईमानदारी से अवलोकन करने से।
अच्छा, तो मतलब खुद को पढ़ना।
बिल्कुल, उनका वो मशहूर वाक्य है ना, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ, ये इसी सोच का ऐलान है। एक तरह से उन्होंने दर्शन को यूनिवर्सिटी के बंद कमरों से निकालकर आम जिंदगी में ला खड़ा किया।
और ये सब वो कर क्यों रहे थे? सिर्फ खुद को जानने के लिए?
खुद को जानना तो था ही, पर उनका बड़ा सवाल ये था कि ये दुनिया जो लगातार बदल रही है, जिसमें कुछ भी पक्का नहीं है, इसमें सही ढंग से, मतलब प्रामाणिक रूप से जिया कैसे जाए?
ये तो आज भी हमारा सवाल है।
हाँ, और उनका जवाब था, जब हम खुद की जटिलताओं को, अपने विरोधाभासों को समझेंगे, तभी हम दूसरों के प्रति ज्यादा सहनशील बन पाएंगे और एक ज्यादा संतुलित, संतोषजनक जिंदगी जी पाएंगे।
और इसीलिए उनका वो आदर्श वाक्य बन गया, कैसेज।
हाँ, मैं क्या जानता हूँ, और ये कोई निराशा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता।
नहीं,
नहीं, ये है बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। ये हर तरह की कट्टरता, हर तरह के अंधे विश्वास पर एक सवाल है। मॉन्टेन कहते थे कि ईमानदारी भरी अनिश्चितता जो है ना,
हाँ,
वो झूठी निश्चितता के घमंड से कहीं बेहतर है।
वाह, आज के इस पोलराइज्ड माहौल में तो ये बात जैसे रामबाण है।
बिल्कुल। खैर, इन निबंधों में मॉन्टेन की सोच कैसे बदली ये भी दिखता है।
अच्छा, कैसे?
जैसे जो पहली किताब आई 1580 में, उसमें निबंध थोड़े छोटे हैं और उन पर स्टोइक फिलॉसफी का असर ज्यादा है।
मतलब वही पुण्य, स्थिरता, दर्द सहना, मौत का सामना करना, ये सब।
हाँ हाँ, उनका एक मशहूर निबंध है, चिंतन करना मृत्यु को सीखना है। यहाँ वो मौत के डर से आजाद होने की बात करते हैं। ये स्टोइक विचारों के काफी करीब है।
अच्छा, और पहली किताब में और क्या खास है?
उसी में वो बच्चों की शिक्षा पर वाला निबंध है। सोचिए, आज हम रट्टा मारने वाले सिस्टम की बात करते हैं, वो सदियों पहले इसकी आलोचना कर रहे थे।
कमाल है, क्या कहते थे वो?
उनका जोर बच्चों के दिमाग में जानकारी ठूंसने पर नहीं था। वो कहते थे कि उनकी निर्णय क्षमता, उनकी जजमेंट को विकसित करो, उन्हें खुद सोचना सिखाओ, न कि तोते की तरह दोहराना।
ये तो आज भी कितना जरूरी लगता है
ना? और फिर आता है वो निबंध जिसने शायद उस वक्त हंगामा मचा दिया होगा, नरभक्षियों पर।
ओह हाँ, ऑन कैनिबल्स। इसमें क्या था?
इसमें वो ब्राजील के कुछ मूल निवासियों का जिक्र करते हैं, जिन्हें यूरोप वाले जंगली या असभ्य मानते थे।
हाँ,
और मॉन्टेन कहते हैं कि भाई रुकिए, शायद ये लोग नैतिकता और सादगी में हम यूरोपियनों से बेहतर हों। वो पूरी यूरोपीय सभ्यता की श्रेष्ठता पर ही सवाल उठा देते हैं।
बाप रे, उस जमाने में ये तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद हुआ ना?
बिल्कुल,
कल्चरल रिलेटिविज्म।
बिल्कुल।
और कितना जबरदस्त उदाहरण है ये, हमें सिखाता है कि हम अपनी मान्यताओं, अपने रिवाजों को ही सबसे अच्छा और आखिरी सच न मान बैठें।
हाँ, कि जिसे हम सभ्य कहते हैं वो बस एक नजरिया हो सकता है।
सही।
इससे जुड़ी उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, सीधे तौर पर तो नहीं है, पर सार वही है कि किसी चीज पर इतना दृढ़ विश्वास नहीं किया जाता जितना उस पर जिसे हम सबसे कम जानते हैं।
उफ, क्या लाइन है। मतलब जितना कम जानते हैं उतना ज्यादा यकीन करते हैं,
है ना कमाल की बात। हमारा आत्मविश्वास अक्सर हमारे ज्ञान के उल्टा चलता है।
ये तो रोज दिखता है।
ये हमें अपने विश्वासों पर सवाल उठाने और दूसरों के लिए ज्यादा खुलापन रखने को कहता है। हाँ, और पहली किताब में ही वो ये भी महसूस करने लगते हैं कि इंसान कितना कितना अस्थिर है, कितना विरोधावासी। उनका एक निबंध है हमारे कार्यों की अस्थिरता पर, वो इसी की पड़ताल है।
अच्छा, फिर दूसरी किताब, वो भी 1580 में ही आई थी?
हाँ, दूसरी भी 1580 में आई। इसमें उनका संदेहवाद, उनका स्केप्टिसिज्म और गहरा होता है और वो और ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं।
मतलब स्टोइक असर कम होने लगता है।
हाँ, वो जो स्टोइक आदर्श था ना कि भावनाओं पर पूरी तरह काबू पालो, वो उन्हें अब उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता।
और इस दूसरी किताब का सबसे अहम निबंध कौन सा है?
वो है रेमंड सेबोर्न के लिए क्षमा याचना, एन अपोलॉजी फॉर रेमंड सेबोर्न। ये बहुत लंबा है और फिलोसॉफिकली बहुत घना भी।
अच्छा, ये सेबोर्न कौन थे और क्षमा याचना किस बात की?
सेबोर्न एक धर्मशास्त्री थे। मॉन्टेन कहने को तो उनका बचाव कर रहे हैं, पर असल में इस बहाने वो इंसान के तर्क की, इंसान के ज्ञान की सीमाओं की धज्जियां उड़ा देते हैं।
अरे कैसे?
वो कहते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, हमारा तर्क कमजोर है, अहंकारी है, और शायद जानवर हमसे बेहतर जीते हैं क्योंकि वो अपनी सहज प्रकृति के हिसाब से चलते हैं।
यानी इंसान अपने सोचने समझने की काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही इतराता है।
बिल्कुल, यही उनका वो मैं क्या जानता हूँ वाला सवाल अपने चरम पर पहुँचता है। वो हमें सिखाते हैं कि सब कुछ जान लेने का दावा करना ही मूर्खता है।
ये बौद्धिक विनम्रता आज तो जैसे गायब ही हो गई है, खासकर सोशल मीडिया पर।
सही कहा। मॉन्टेन याद दिलाते हैं कि ना जानना भी ज्ञान का एक रूप हो सकता है, अगर आप जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते।
फिर आई तीसरी और आखिरी किताब 1588 में।
हाँ, और यहाँ मॉन्टेन अपने सबसे परिपक्व, सबसे मैच्योर रूप में दिखते हैं। निबंध और लंबे हो गए हैं और ज्यादा निजी
और भटकते भी हैं शायद एक विषय से दूसरे पर।
हाँ बिल्कुल, जैसे हमारा मन सोचता है ना, एक विचार से दूसरा जुड़ता चला जाता है। अब उनका फोकस मौत की तैयारी से हटकर जिंदगी को उसकी पूरी रंगत में जीने पर आ गया है।
अच्छा, कैसे निबंध हैं इसमें?
जैसे एक है पश्चाताप पर, ऑन रिपेंटेंस। उसमें वो कहते हैं कि मैं कम ही पछताता हूँ।
क्यों, गलतियां नहीं की?
नहीं, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि मेरे काम, चाहे वो सही थे या गलत, वो उस पल की मेरी सच्चाई थे, मेरी प्रामाणिकता का हिस्सा थे।
वाह, ये तो आत्मस्वीकृति हुई, सेल्फ एक्सेप्टेंस।
बिल्कुल, ये लगातार खुद को बदलने की धुन नहीं है, बल्कि अपनी पूरी इंसानियत को अपनी कमजोरियों समेत स्वीकार करना है। ये नहीं कर रहे कि गलतियों से सीखो मत, पर खुद को कोसो भी मत।
और फिर वो आखिरी निबंध अनुभव पर,
ऑन एक्सपीरियंस।
हाँ, वो तो जैसे पूरी किताब का निचोड़ है, सार है।
उसमें क्या कहते हैं?
उसमें वो कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए सबसे अच्छा गाइड कोई किताबी सिद्धांत नहीं है,
तो क्या है?
खुद का और दुनिया का सजग अवलोकन, अपना अनुभव। और वो शरीर और मन की एकता की बात करते हैं, शारीरिक सुखों को, जरूरतों को सम्मान देते हैं। ये उस जमाने के लिए बड़ी बात थी।
हाँ, तब तो शरीर को मन से कमतर माना जाता था।
चाहे एक पूर्ण पुण्यता है और मानो दिव्य है।
क्या बात है, मतलब बस होना, जिंदा होना, और उस होने का, अपने वजूद का ईमानदारी से अनुभव करना, यही अपने आप में दिव्य है।
है ना अद्भुत, ये भागदौड़ वाली जिंदगी में एक ठहराव जैसा है। तो कुल मिलाकर इन तीनों किताबों में हम मॉन्टेन को बदलते देखते हैं, एक पारंपरिक नैतिकतावादी से एक गहरे संदेहवादी, और फिर जीवन को उसकी पूरी जटिलता में स्वीकार करने वाले एक अनोखे दार्शनिक तक।
तो अगर इन हजारों पन्नों से कुछ सबसे जरूरी बातें, कुछ की टेकअवेज निकालने हों तो क्या होंगी? मेरे लिए तो शायद पहली चीज है आत्मज्ञान की अहमियत, खुद को समझना, शायद सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी काम।
हाँ, और वो कहते भी हैं प्रत्येक मनुष्य में संपूर्ण मानव स्थिति की मुहर होती है, मतलब खुद को जानकर हम पूरी इंसानियत के बारे में कुछ ना कुछ सीख जाते हैं।
दूसरी बात मेरे हिसाब से वो बौद्धिक विनम्रता और संदेह की जरूरत, हर दावे पर सवाल उठाना, खासकर अपने दावों पर।
हाँ, वो मैं क्या जानता हूँ वाला रवैया, ये हमें कट्टर बनने से रोकता है। आज के फेक न्यूज वाले माहौल में तो ये बहुत ही जरूरी है।
तीसरी बात, इंसान की जटिलता और उसके विरोधाभासों को स्वीकारना, ये मानना कि हम बदलते रहते हैं, हमारे अंदर कई बार अलग अलग विचार टकराते हैं, ये ठीक है।
उनकी वो लाइन याद है, हम सब चिथड़े हैं, इतने बेडौल और विविध कि हर टुकड़ा हर क्षण अपना खेल खेलता है। इसे मानने से हम खुद पर और दूसरों पर कम सख्त होते हैं।
चौथी, सहिष्णुता और दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश। वो नरभक्षियों वाला निबंध हमें यही सिखाता है ना?
बिल्कुल, कि हमारी संस्कृति, हमारे तौर तरीके ही सबसे अच्छे नहीं हैं। दूसरों को अजीब या गलत कहने से पहले रुक कर सोचना कि शायद उनका भी अपना कोई तर्क हो।
और पांचवी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है साधारण रोजमर्रा के अनुभवों का महत्व। दर्शन सिर्फ ऊंची ऊंची बातों में नहीं है।
हाँ, वो खाने में, सोने में, बीमार होने में, दोस्तों से गपशप करने में, सब में है। मॉन्टेन हमें अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों पर ध्यान देना सिखाते हैं, शायद असली खुशी वहीं छिपी हो।
ये सारे विचार सुनने में जितने सीधे लगते हैं, आज की जिंदगी में उतने ही गहरे मायने रखते हैं ना?
बिल्कुल, जैसे मॉन्टेन खुद को जांचते थे, क्या हम वो आज कर सकते हैं?
कैसे?
शायद रोज बस 10 मिनट शांति से बैठकर सोचें कि आज क्या महसूस किया, क्यों किया, या डायरी लिखें। ये हमें अपने अंदर के शोर को थोड़ा समझने में मदद कर सकता है।
हाँ, और ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आ सकता है।
कैसे?
जैसे अनिश्चितता को स्वीकारना, ये मानना कि मेरे पास सारे जवाब नहीं है, ये आपको एक बेहतर टीम लीडर या साथी बना सकता है।
सही बात है, और ये समझना कि लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग बर्ताव क्यों करते हैं, इससे सहानुभूति बढ़ती है।
और वो सांस्कृतिक समझ वाली बात, मॉन्टेन हमें सिखाते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई हमसे अलग है, वो हमसे कमतर नहीं है।
हाँ, ये आज के इस ग्लोबल समाज में पुल बनाने में मदद कर सकता है, दीवारें खड़ी करने में नहीं।
मेंटल हेल्थ के लिहाज से भी सोचें तो खुद की कमियों को, बदलावों को स्वीकार करना कितना राहत भरा हो सकता है। परफेक्ट बनने का प्रेशर हटाकर जैसे है वैसे खुद को अपनाने की कोशिश करना।
हाँ, ये मॉन्टेन का एक बड़ा तोहफा है, और वो छोटी छोटी चीजों का आनंद।
हाँ, अच्छी नींद, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, खिड़की से बाहर देखना, ये सब भी मायने रखता है।
यह मैं जिंदगी की रेस में थोड़ा धीमा होने और वर्तमान पल में जीने की याद दिलाता है।
तो आखिर में मॉन्टेन से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है, क्या टेक अवे है? मेरे लिए तो ये है कि जिंदगी का असली मकसद शायद जवाब ढूंढना नहीं है,
बल्कि
सही सवाल पूछना है, खुद से, दुनिया से। और सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूँ, मैं क्या जानता हूँ और मैं कैसे जीना चाहती हूँ।
वाह, और मेरे लिए सबसे अहम बात है उनकी ईमानदारी। जिस तरह वो बिना किसी झिझक के अपनी कमजोरियां, अपने शक, अपनी बदलती राय सामने रखते हैं, वो कमाल है।
हाँ, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए।
ये हमें सिखाता है कि प्रामाणिक होना, खुद के प्रति सच्चा होना शायद सबसे बड़ा नैतिक गुण है। और उनकी वो आत्मनिर्भरता वाली बात भी बहुत काम की है। दुनिया में सबसे बड़ी बात ये जानना है कि स्वयं के लिए पर्याप्त कैसे बने।
बिल्कुल, मॉन्टेन की विरासत यही है कि उन्होंने दर्शन को आम इंसान के लिए मतलब सुलभ बनाया। उन्होंने दिखाया कि गहरा चिंतन महलों या मठों में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में होता है।
हाँ, उनके निबंध कोई नियम कानून की किताब नहीं है, वो तो एक बातचीत की शुरुआत है जो जिंदगी भर चल सकती है।
और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाते हैं।
क्या?
मॉन्टेन ने खुद को समझने के लिए लिखा। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम सब खुद को दुनिया के सामने पेश करने में लगे हैं, एक परफेक्ट इमेज बनाने में।
सही कहा।
क्या हम मॉन्टेन से प्रेरणा लेकर इस बाहरी छवि को चमकाने की बजाय अपने अंदर के उस जटिल असली मैं को समझने और स्वीकार करने पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं?
सोचने वाली बात है और गहरी बात।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।